नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत का अगला वार्षिक बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी आई वित्त मंत्री ने यहां बुर्किंग्स इंस्टीट्यूट में जाने माने अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद से संवाद के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा। उनसे अगले वर्ष के बजट को लेकर सवाल किया गया था। सीतारमण ने कहा, आगामी बजट के बारे में कुछ विशेष बता पाना अभी जल्दबाजी होगी और ये मुश्किल भी है, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो वृद्धि की प्राथमिकताएं सबसे ऊपर रहेंगी। मुद्रास्फीति की चिंताओं से भी निपटना होगा, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि आप वृद्धि को किस प्रकार बरकरार रखेंगे। फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट के लिए तैयारियां दिसंबर से शुरू हो जाती हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अनुदान को मंजूरी दी है। ये अनुदान इन कंपनियों द्वारा पिछले 2 साल के दौरान रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी को लागत से कम मूल्य पर बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 साल से घरेलू रसोई गैस को लागत से कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक में 3 पेट्रोलियम विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक मुश्त अनुदान देने की मंजूरी दी। अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर एलपीजी बिक्री पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अपडेट कराने का आग्रह किया है जिन्होंने अपना आधार 10 साल से पहले बनवाया था, उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया। UIDAI ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सूचनाएं अद्यतन करने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरीके से किया जा सकता है, हालांकि उसने इसे अनिवार्य नहीं बताया है। उसने कहा, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट कराने का आग्रह किया जाता है। गौतम अडानी का पावर टू पोर्ट समूह तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। अब अडानी पोर्ट को एक और बंदरगाह के अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की अहमदाबाद और हैदराबाद बेंच ने गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के 58.1% बचे हुए हिस्सेदारी को खरीदने की मंजूरी दे दी है। वहीं अडानी पोर्ट के शेयर में तेजी देखने को मिली। दोपहर 11:24 पर अडानी पोर्ट 810 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। अडानी पोर्ट कंपनी ने सोमवार को इस अधिग्रहण की जानकारी दी। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड के बाकी बचे 58.1% हिस्सेदारी के खरीदते ही अडानी के पास GPL की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि कंपनी अडानी पोर्ट की सहायक कंपनी बन जाएगी। गंगावरम पोर्ट एक सभी मौसम में डीप वाटर मल्टीपर्पज के लिए काम करने वाला बंदरगाह है, जबकि अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी ग्रुप के कई कंपनियों में से एक फर्म है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। देश में इस साल के पहले 9 महीनों में कुल निवेश बैंकिंग शुल्क 23% गिरकर $66.84 करोड़ रह गया। ये वर्ष 2016 के बाद सबसे कम है। बाजार विश्लेषकों ने ये जानकारी दी। रिफिनिटिव के आंकड़ों के अनुसार निवेश बैंकरों द्वारा एकत्र किए गए कुल शुल्क में से इक्विटी पूंजी बाजार शुल्क 46.4% कम होकर $13.84 करोड़ रह गया। रेफिनेटिव लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह की इकाई है। ये वित्तीय बाजार आंकड़ों की उपलब्ध कराने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है। हालांकि ऋण पूंजी बाजार गतिविधियों से शुल्क बेहतर रहा। यह एक साल पहले की तुलना में 10.1% घटकर $12.8 करोड़ रहा। पूर्ण M&M सलाहकार शुल्क सालाना 17.8% गिरकर $25.21 करोड़ रह गया, जबकि ऋण को एक साथ जोड़ने का शुल्क साल के पहले 9 महीनों में 6.2% घटकर $14.99 करोड़ पर आ गया। व्हाट्सएप एक सर्विलांस टूल है, वह अपने यूजर्स पर नजर रखता है। व्हाट्सएप यूजर्स के डेटा को जासूसी के लिए उपलब्ध कराता है। व्हाट्सएप सरकार, एजेंसी और हैकर्स को मैसेज का एक्सेस देता है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर ये तमाम आरोप लगाए हैं टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने। टेलीग्राम के संस्थापक का कहना है कि व्हाट्सएप यूजर्स के फोन की हर चीज तक हैकर्स की पूरी पहुँच होती है। उन्होंने लोगों से अपने फोन को हैक होने से बचाने के लिए व्हाट्सएप को छोड़कर किसी भी दूसरे मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आप भले ही टेलीग्राम यूज ना करें, लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। सरकार ने बुधवार को टैरिफ रेट कोटा के तहत अमेरिका को चीनी निर्यात की अवधि बढ़ा दी। निर्यातक अब इस साल दिसंबर अंत तक अमेरिका को तय मात्रा में कच्ची चीनी का निर्यात कर सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।